गर्मी ज्यादा लग जाए तो दाहें नथुने को बंद करके बाहें नथुने से श्वास लिया, जरा रोका और दाहें से श्वास को छोड़ा और गर्मी शरीर की गर्मी को मैं बाहर निकाल रहा। ऐसा 4 से 5 प्राणायाम तो गर्मी के प्रभाव को तोड़ देगा। जाड़ों में सर्दी लगती है, खांसी होती है। अपने वैद्य जो नेता है ना, तो हाँ जी हाँ जी प्रणाम, मैं क्या सर्दी लग रही है सर्दी? हाँ बोले मेरे ले जा, ठीक नहीं हो। मैं क्या क्या सर, तू दवाई क्या लेती? सूर्य नाड़ी का सूर्य भेदी प्राणायाम करो, दाहे नक से श्वास लो अच्छी तरह से और रोको। उस समय पेट को अंदर रखो और योनि को सकोड़ के रखो तो और ज्यादा लाभ होगा। श्वास लो और फिर दाहे नाक से श्वास लिया, बाहें से छोड़ दो। ऐसे 5-7 बार करो, 2-4 घंटे में बोले सब ठीक हो गया। तो आयुर्वेदिक दवा निर्दोष तो है लेकिन समय लगाती है। एलोपैथी दवा फास्ट तो है लेकिन रिएक्शन करती है। लेकिन प्राणायाम की विद्या न रिएक्शन करती है न ज्यादा देर लगाती है, फटाक से जवाब दे देती है। लो ये एक बार मकराक्ष, भयंकर राक्षस, मकराक्ष ने रावण को पकड़ लिया और रावण की ऐसी बुरी हालत की कि क्या कहे महाराज। मकराक्ष दैत्य ने रावण की ऐसी हालत की कि रावण की जो सुंदरी थी, प्रेयसी थी, उसके सामने, अपनी प्रेयसी के सामने अपमान हो, गाली सुननी पड़े, जूते कोई मार दे, तो स्त्री के सामने पुरुष मार खाए तो उसको तो मार की इतनी पीड़ा नहीं होती जितना स्त्री भगत को स्त्री के सामने अपमान की पीड़ा होती। और वो जो सुंदरी थी रावण की, वो रावण पर कुर्बान जाती थी। तो मकराक्ष ने निर्णय किया कि रावण को यज्ञ में होम देंगे और बाद में ये तेरी प्रेयसी को भी यज्ञ में होम देंगे, फिर वहां प्रेतों के भटकना। सारे दुख आते ने इंद्रिय लोलुपता के कारण। और इंद्रिय लोलुपता क्यों होती है? कि मन में वासना, राग और द्वेष के कारण। राग द्वेष क्यों होता है? कि देह में अहम रखने के कारण। देह में अहम क्यों होता है महाराज जी? कि सच्ची मैं को नहीं जानते। नहीं जानना की शास्त्रीय भाषा है अविद्या। जो अविद्यमान है उसको विद्यमान मैं मानते हैं और जो विद्यमान है उसको नहीं जानते, ये हुआ अविद्या। अविद्या से अस्मिता हो जाती है। अपनी सच्ची मैं जो ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा चैतन्य है, कभी न मरने वाला जो स्व है उसको नहीं जानते। इस अविद्या के कारण मरने वाले शरीरों में मैं होती। मरने वाले शरीरों में मैं आने से वही ज्ञान स्वरूप चिदघन चैतन्य जीव का असली स्वरूप, जिसकी मौत नहीं होती, जिसको वास्तविक में दुख दुखी नहीं कर सकता, जिसको वास्तविक में संसार का विकारी सुख सुखी नहीं कर सकता, अगर संसारी सुख तुम्हें सुखी कर सकता तो अभी अपन दुखी क्यों है? और संसारी दुख अपने को दुखी ही कर सकता तो बीच बीच में हम सुखी कैसे हो गए? तो दुख सच्चा नहीं है, सच्चा सदा रहता है। सुख भी सच्चा नहीं है, संसारी सुख। तो महाराज फिर क्या? ये बहुत ऊंची बात आप सुनने जा रहे हैं। सारा संसार जिससे बंधा है उसका पोल खोल देते हैं अपन। अनुकूल वेदन्यम सुखम, प्रतिकूल वेदन्यम दुखम। जो मन के अनुकूल लगता है उसको अपन सुख मानते, मन के प्रतिकूल लगता है उसको दुख मानते। ये मेरा मित्र है, देखकर सुख हुआ और उसी को देखकर दूसरा लोग दुखी हो गया, क्योंकि वो दूसरे का शत्रु। शराब कबाब और अंडा का आमलेट अथवा जो कुछ, वो देखकर सुख हुआ शराबी कबाबी को, उसका उसमें राग है। आपको देखकर दुख हुआ, अपमान हुआ कि हम इतने नीच हैं क्या, कि ऐसी नीच चीजें करी। आमलेट दे रहे प्रसादी में है छी, हम आए और हमारा स्वागत करते शराब कबाब और आमलेट से। पता नहीं कि हम साधक हैं, बापू के शिष्य हैं, ये तो कैसे आदमी है, सेठ है लेकिन उनको अकल नहीं है। तुरंत आप फतवा दे डालोगे। तो वस्तुओं में सुख दुख नहीं है, व्यक्तियों में सुख दुख नहीं है, आपकी अनुकूलता में सुख दिखता है, प्रतिकूलता में दुख दिखता है। गर्मी में ठंडी हवा सुख रूप है और सर्दी में ठंडी हवा दुख रूप हो जाती। गर्मी में गर्म हवा दुख रूप हो जाती, ठंडी हवा सुख रूप हो जाती। गर्मी में ठंडा पानी सुख लगता है और गर्म पानी पीने को मिले तो दुख लगता है। तो वस्तुओं में सुख दुख नहीं है, इंद्रियों में भी सुख दुख नहीं है। इंद्रियों को करण बोला जाता है, जो बाहर की वस्तुओं को पकड़े उसको करण बोलते। तो करण दो प्रकार के होते हैं। जैसे आंख है तो रूप को पकड़ती है, नाक है तो गंध को पकड़ता है, कान है तो शब्द को पकड़ता है, जीभ है तो स्वाद को पकड़ती है, त्वचा है तो ठंडे गर्म को पकड़ती है, इसको करण बोलते। दूसरा होता है अंतःकरण, भीतर से भूख और प्यास आंख से पता नहीं चलेगा, मान और अपमान का आंख से पता नहीं चलेगा, मित्र और शत्रु का आंख से पता नहीं चलेगा। मन बोलेगा ये शत्रु है, आंख तो दिखा देगी व्यक्ति, मन बोलेगा ये तारामी है, ये अच्छा है। तो हरामी किसको बोलेगा मन? जिससे दुख मिला है या मिलेगा, अथवा जो दुख देता है दूसरों को, जो पसंद नहीं है उसको बोलेगा हरामी। लेकिन उस हरामी को अपनी गैंग वाले तो बॉस मानते, तो व्यक्ति दुख रूप नहीं है, हमारा मानसिक संबंध दुख रूप होता है, मानसिक संबंध सुख रूप। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण बोलते हैं। अंतःकरण का कोई रूप नहीं है, अंतःकरण का कोई रंग नहीं है, अंतःकरण का कोई वजन नहीं है, अगर रूप रंग और वजन होता तो विज्ञानियों के साधनों में आ जाता और वो बोलते चलो हम अंतःकरण बदल देते, तुम्हारा अंतःकरण हम शुद्ध कर देते, तुम्हारे अंतःकरण को बलवान कर देते हैं, दवाइयां औषधियां चूर्ण खोज लेते। इसीलिए सभी को धर्म की शरण आना ही पड़ता है। अंतरंग साधन को धर्म बोलते हैं, बाहर की खोज को ऐहिक विज्ञान बोलते हैं, लेकिन अंतःकरण को ठीक ठाक करने के लिए जो विज्ञान है उसे धर्म बोलते हैं। तो अंतःकरण का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई वजन नहीं, कोई आकृति नहीं, फिर भी वह अंतःकरण है, ऐसा सभी को मानना पड़ता है। विज्ञानी लोग मन की कल्पना का नाम मनोविज्ञान रख देते। मनोविज्ञान क्या है? मन की कल्पना ही। लेकिन भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म ने तो इससे भी बहुत बहुत आगे की बातें कह दी लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले। फ्राइड का मनोविज्ञान उसकी रुग्ण मानसिकता की खबर दे रहा है। वो बचपन में अपनी मां पर कामी हो गया था तो उसने ऐसी कल्पना जोड़ दी कि लड़के को मां पर काम विकार होता है, लड़की को बाप पर होता है। लेकिन बाप पर काम भोगने की संभावना न होने से मां के साथ लड़की की नहीं बनती, यही कारण है। और बेटे का मां के प्रति काम विकार होता और बाप आड़ा आता है, इसलिए बेटे और बाप की नहीं बनती। और समाज में ऐसा दिखता भी है। दिखता है तो रुग्ण मनोविज्ञान कहता है कि ये कारण है। लेकिन नारदीय मनोविज्ञान, वशिष्ठ मनोविज्ञान, पातंजलि मनोविज्ञान, हिंदू धर्म का मनोविज्ञान कहेगा कि बेटी मां के संग रहती है तो मां उसको अपने ढांचे में ढालना चाहती है और बेटी का अपना आम है तो मां उसको रोकती है, टोकती है, तो मां के मान्यता का और बेटी के अहम का टकराव होना स्वाभाविक है, इसलिए बेटी मां से कतराती। हाँ, जिसकी बेटी चालाक और मां बुद्धू है उन मां बेटी की बन जाएगी, अथवा जिसकी बेटी के अहम ढीला है और मां का समझाने की रीत मनोवैज्ञानिक है, बेटी देख ऐसा नहीं ऐसा ऐसा, तो उनका मेल हो जाएगा। झगड़े कहां होते हैं? अहम टकराते, इसी का नाम झगड़ा है। जैसे कयादु का पति का अहम है कि मैं ही भगवान हूं, राजा ही भगवान होता है और कोई भगवान विष्णु विष्णु नहीं होता, मेरे भाई को मारने वाला विष्णु भगवान नहीं, उसका पूजन नहीं कर रहे। और नारद जी की कृपा से कयादु के गर्भस्थ बालक प्रह्लाद में भगवान की भक्ति थी और प्रह्लाद भक्ति संपन्न बालक, जहां कुछ देखता है तो वहां उसमें ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की स्फूर्ति, ईश्वर का चैतन्य, ईश्वर का आनंद और ईश्वर ही ज्ञान स्वरूप है। और वही पाप ताप को दुख को हरने वाले हैं और अपना सत्व भरने वाले हैं, इसलिए उन्हें हरि कहते हैं। वही नर नारी का अयन आत्मा होकर बैठे, इसलिए उसे नारायण कहते। वही अच्युत की लीला है जो कभी अपने पद से, अपने अस्तित्व से च्युत नहीं होता। शरीर अपने अस्तित्व से च्युत हो जाएगा, मर जाएगा। नेता अपने कुर्सी से च्युत हो जाएगा, सेठ अपने धन से च्युत हो जाएगा, बड़े बड़े लोकपाल जिनकी कल्प तक की आयुष्य थी ऐसे लोग भी च्युत हो जाते कल्प के अंत में। चतुर्युगी चतुर्युगी की आयु लेने वाले लोग भी चले गए। तो हिरण्यकश्यपु ने तप करके इतनी बड़ी आयुष्य और इतना बड़ा सामर्थ्य ले लिया था। 44 लाख वर्ष होते चतुर्युगी में करीब, हाँ होते 43 लाख 32 हजार वर्ष, मतलब करीब 44 लाख वर्ष एक चतुर्युगी होती है। ऐसी चतुर्युगी तक जीने वाला हिरण्यकश्यप और न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न देव से मरू, न मानव से मरू, न दानव से मरू, इतने जो भी जहां भी मौत की संभावना थी सारे वरदान ले बैठा, अब उसको क्या है? तो मैं एक छत्र भगवान स्वयं देखो उस अच्युत की लीला। इतना बड़ा खतरनाक अहम सजा हुआ और उसके घर में अपना भक्त भेज दिया और वह भक्त जन्म जात प्रभु का दृढ़ भक्त, और वहां उसके पास राज्य बल है, तप बल है, ये है वो है। तप से भगवान नहीं मिलते, तप से आपकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, अगर भगवान प्राप्ति की कामना है तो वो तप आपको भगवान के तरफ मदद करेगा, नहीं तो 60-60 हजार वर्ष तपस्या किए और फिर मांगे के न ऊपर मरू न नीचे मरू और फिर भोगी बने और भगवान के विरोधी हो गए। तो बोले फिर भगवान ने वरदान ऐसे कैसे दिया? देखो भाई, वास्तविक में भगवान अच्युत है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, वासुदेव माना सब में बस रहा है, वही अच्युत। उस अच्युत की सत्ता तास में एकाकार रहने वाले ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने का सामर्थ्य रखते तो उनकी सृष्टि में क्या हेरफेर करना, कानून बदलना उनके अधिकार में आ जाता है। जैसे मैंने घर बनाया तो उसको तोड़ना, रखना, बदलना वो मेरे अधिकार में आ गया। हिमालय को कैसे करना मेरे अधिकार में। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि के बने हुए जीव सत्ता उस अच्युत की, जिस अच्युत की सत्ता से ब्रह्मा जी स्वयं है। तो ब्रह्मा जी को उसने कहा कि हम कभी ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन कभी ना मरने का वरदान मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरा भी शरीर शांत है। हाँ, किससे ना मरूं? तो जो मेरी सृष्टि में मेरी चीजें बनाई हैं वे तुझे नहीं मारेगी, तो बता दे किस किस से नहीं मरे। बोले दिन को न मरूं, रात को भी न मरूं, सुबह न मरूं, शाम को न मरूं, दोपहर को भी न मरूं। तो ऐसा ऐसा जो जो उसको याद आया वो सारे के सारे बोलता गया और ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु तथास्तु। तो अब मारने वाला तो कोई बचा ही नहीं, ऐसा करके अपना अहम पोषने में लगा। ब्राह्मण और भक्त ये इनके लिए उसने मुसीबत कर दी, सज्जनों के लिए मुसीबत कर दी, जो उनकी खुशामत करे वही सोने का है। ऐसे कई मंद बुद्धि के लोग होते कि खुशामत खोर जो बोलते वही सही है, इसी से पार्टियां बन जाती। अच्युत की शरण हम नहीं जाते, हम अहम की शरण जाते। अहम भी देह में होता है और इसी से सारे झगड़े होते, इसी से सारे जन्म मरण होते, इसी से सारे दुखों की परंपरा चलती। तो वो अच्युत दूर नहीं है, वो केशव है, वासुदेव है, अभी हमारे साथ है। उसी अच्युत की सत्ता से मेरी जीभ बोल रही, उसी अच्युत की सत्ता से आपके कान सुन रहे, और वही अच्युत और आप और हम पर प्रसन्न है, इसलिए अपनी कथा करने का सुनने का अवसर दे रहा है। हे परमेश्वरा, हे अच्युत, ये अंतःकरण और शरीर तो एक प्रकार की वीणा है, साधन है। उन साधनों से तू अपनी लीला करके अपने शरण लाए, बाकी तेरी माया तो अपनी शरण खींचती है। और तेरे वचन है। देवी है शा गुणमयी मम मारा दुरतया, ये मुझ अच्युत देव की माया है। मा या मा माना जो हो नहीं और दिखे बिल्कुल ठोस, हो नहीं और दिखे ठोस, जैसे सपने में कुछ नहीं होता और बड़ा ठोस दिखता है कि भाग खा रहा है, शादी हो रही है, बराती भोजन कर रहे हैं, झगड़ा हो गया, मेरे को लोग मार रहे और लोग चीखते और सपने सपने में उठ के खड़े हो जाते। सपना तो टूट जाता है लेकिन पसीना और डर की धड़कने बाद में भी रहती है, ये सपने की माया है। ऐसे ये जागृत की माया, सपना ये जीव के संकल्प की माया है और जागृत ये ब्रह्मा के संकल्प की माया है। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे डाले, अर्वा हिरणाकश्यप जब चुलम करने लगे तो भक्तों के हृदय की पुकार कि तुम्हारा नाम नहीं ले सकते, सात्विक भोजन मिलता नहीं और हम शराब कैसे पिए, हम मांस कैसे खाएं, हम ऐसे कैसे रहे हे प्रभु। और जो भी सात्विकता से जीते थे वो छुप छुप कर जीते थे। कयाधु ने कहा प्रहलाद को, बेटे भगवान हरि की भक्ति करने वाले भी तुम्हारे पिता के राज्य में खुली भक्ति नहीं कर सकते बेटे, और तुम बोलते हो भगवान हरि ही सत्य है, वही सार है, वही अच्युत है, बेटा तुम्हारे पिताजी नाराज होते हैं। तुम भक्ति करो लेकिन पिताजी, तो प्रहलाद ने कहा मां तेरे को जो बोलना है जल्दी बता दे नहीं तो पिताजी आ जाएंगे। तो कयाधु का मनोविज्ञान थोड़ी देर के लिए प्रहलाद को अपने साथ ले चला, लेकिन प्रहलाद को अच्युत की भक्ति दृढ़ थी और कयाधु स्त्री जाती थी तो उसको साथ देती है तो पति के प्रकोप से साध्वी दुखी होना नहीं चाहती थी, इसलिए वह तत्क तटस्थ रह गई। अपने तरफ से भीतर से तो प्रहलाद का पक्ष था लेकिन बाहर से पति। तो ऐसे कईयों के हृदय की पुकार के भगवान तुम रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। तो ये प्रार्थना करते करते जब लोग शांत होते उनका मन अंतःकरण भगवान की प्रार्थना करके जब द्रवित होता है तब वो ज्ञान स्वरूप जो अच्युत है, ऐसा नहीं कि मरने के बाद कहीं जाएंगे और वो अच्युत को देखेंगे, नहीं, अब भी जहां से बोल रहे हैं हम तुम सुन रहे हो अच्युत की सत्ता से बोल रहे, तो प्रार्थनाएं जब होती है तो फिर उस अच्युत स्वरूप परमात्मा की लीला हुई और कोई भक्त अंतःकरण हिरणाकश्यप के घर जन्म। तो हिरणाकश्यप को प्रेरणा हुई कि मैं ऐसी कुछ तपस्या करूं, ऐसे वरदान ले आऊं, तो वो चला गया था तपस्या करने। तो देवताओं ने देखा कि अभी हिरणाकश्यप में सताता है, शत्रु तपस्या करने गया तो धावा बोल दिया और आसानी से शत्रु के राज्य का सत्यानाश कर दिया और महल को जलाने आए। तो कयाधु थी, अब स्त्री को कैसे जलाए, तो उसको ले गए उसके गर्भ में, भगवान के भक्त आ चुके थे तो देवताओं को पता नहीं था, लेकिन वो जो अच्युत है उसी अच्युत का संकल्प है देव ऋषि नारद की आकृति, अभी भी वे प्रकट हो सकते हैं, किसी रूप में भी आके बैठ सकते हैं देव ऋषि नारद। और फिर उस रूप में आकर कह सकते कि मैं परसों आऊंगा। आप कौन हो ब्राह्मण कि मैं परसों आऊंगा, आपको नारद जी के दर्शन हो जाएंगे। आए परसों को मेरे पास नहीं, दूसरे महापुरुष के पास, या फलानी तिथि को आऊंगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास आए, जाते जाते गोरखपुर में, और जहां आए थे और बातचीत हुई वो चबूतरा भी बना के रखा, मैं वो देख के भी आया। तो देवऋषि नारद वहां प्रकट हुए कि इस अबला को कहां ले जा रहे हो। बोले हम अबला को तो नहीं मारेंगे, लेकिन इसके गर्भ में हमारे शत्रु का बीज है। हिरण्यकश्यप हमारा शत्रु है और दैत्यों को, दैत्यों का बल इतना है कि हमारे को चूर्ण कर दिया और अभी हम विजेता हुए। तो सांप का बच्चा भी सांप होता है, ऐसे हिरण्यकश्यप का बच्चू है तो हिरण्यकश्यप जैसा दुख देगा। नारद ने कहा सावधान इंद्र, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। बोले ये गर्भस्थ बालक को हम इसलिए नहीं मारते कि भ्रूण हत्या महापाप है। ये बाई को ले जाते हैं स्वर्ग में, जब प्रसूति करेगी तब उसके बच्चे को मार देंगे। तो जीवित बालक को मारने में तो बालक मारने का पाप लगता है, लेकिन गर्भस्थ बालक को मारने से भ्रूण हत्या लगती, वो महापाप माना जाता है। लेकिन गर्भस्थ बालक मारने योग्य नहीं है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। कोई जाति वाला ऐसा ना माने कि भाई बापूजी तो हिंदू है, बापूजी तो फलाने हैं। नहीं नहीं, भगवान के जो भक्त और संत होते हैं, जैसे सूरज हिंदुओं का ही नहीं है, मुसलमानों का ही नहीं है, सभी का है। ईसाइयों का सूरज है क्या? सूरज सबका है। ऐसे जिनके हृदय में भगवान का प्रकाश हुआ है, ज्ञान हुआ है, वे सत्पुरुष महापुरुष सभी के होते हैं। ऋषि दयानंद एकदम खुला बोलते थे, मैं तो इतना कड़क नहीं बोलता हूं किसी के लिए, तो पंडितों की धज्जियां उड़ा देते थे। मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ ध्वज रखो, ये वैसा है, तो पंडितों ने विरोध किया। मुसलमानों को भी रोकड़ा सुना देते, क्या अल्लाह हो अकबर ये करके चिल्ला रहे हो, कंकड़ पत्थर जोड़ के दिया मस्जिद बनाए, तापे मुल्ला चढ़ी चिल्लाए क्या बहरा हुआ खुदा, तापे मुल्ला चढ़ी बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। इस प्रकार मुसलमानों के कुरान शरीफ पर भी वो प्रहसन करते और मुसलमानों को भी अच्छी तरह से बराबर शुद्ध करने के भाव से बोलते थे। लेकिन इसमें कुछ मुसलमान जो नैरो माइंड के होते थे वे बिगड़ जाते, ऐसे कुछ हिंदू भी जो पंडित थे नन्हे दिमाग के वे भी बिगड़ जाते थे, तो ऋषि दयानंद का विरोध करते। अलीगढ़ में ऋषि दयानंद का प्रवचन था और किसी मुसलमान के घर ठहरे थे, अपने हाथ से भोजन बना लेते और शाम को कुरान शरीफ पर भाषण करते। तो मुसलमान आगे वान देखते थे कि ये साधु है तो तगड़ा बोलता तो सत्य, लेकिन हमको ही क्यों, हिंदू इतना विरोध करते हैं, तो जाओ इनको समझाएं कि हिंदुओं का ही काफरों का ही विरोध करें, हमारा क्यों करते। तो निवास पर चले गए, बोले ऋषि दयानंद जी हिंदू पंडे पंडित आपका इतना विरोध करते हैं कि हिंदू की धर्मशाला के तुम्हारे मंदिर में आपको ठहरने की व्यवस्था होती है तो वहां भी वो अड़ंगा जमा देते पुजारी पुजारी, तो मुसलमान के घर आप ठहरे तो हमारे घर रहते हो, हमारे घर आप बनाकर खाते हो और हम ही को गालियां देते हो। आगे वालों ने अच्छा तर्क रख दिया, लेकिन ऋषि जो अच्युत का ध्यान और अच्युत ही सारे वो समझे समाज को समझाना चाहते थे, तो उनकी बुद्धि तो प्रतिबन्ना बुद्धि है। नेताओं की बुद्धि कुशल हो सकती है, लेकिन महापुरुष की बुद्धि प्रतिपन्ना होती है। किस समय क्या निर्णय ले लेना, किस समय क्या रहस्यमय बात बोल देना, वो प्रतिपन्ना मति के धनी होते महापुरुष। बोले जिनके घर रहता हूं और बनाता हूं खाता हूं उनका भला न चाहूं और उनको सत्य करके सत्य तक न पहुंचाऊं तो मैं क्या गद्दार बनूं। आगे वहां निरुत्तर हो गए। मुसलमानों में भी समझदार ब्रॉड माइंड के लोग होते ना, नेहरो होते तो बोले चलो ऐसे तैसे, लेकिन उन्होंने मथा टेक लिया, भाई फकीर ठीक है। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। जलालुद्दीन रूमी का वचन है, अनुभव। तो 50 वर्ष की नमाज अदा कर उससे भी दो क्षण फकीरों का संग, तो अगर कंकड़ है तो तुझे हीरा बना देगा। बिना पुरह बिना बेदा हीरा है तो फकीरों के संग से तू बेदा हुआ हीरा हो जाएगा और मालिक के गले तक पहुंच जाएगा मणिमाला में। जलालुद्दीन रोमी ने भागवत सुनकर कहा हो या पहले कहा हो या बाद में कहा हो, मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बात भागवत में भी यही आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी अंतःकरण का अज्ञान दूर नहीं होता और दो क्षण साधु की सेवा से अंतःकरण का अज्ञान मिट जाता है। इसलिए जलाशयों में तीर्थ बुद्धि करने वाले, मूर्तियों में भगवत बुद्धि करने वाले, कुटुंब को अपना मानने वाले और देह को मैं मानने वाले लोग अगर महापुरुष में भगवत बुद्धि पूज्य बुद्धि नहीं कर पाते तो साक्षात गोखरा, गोखर मना कुंभार के हाथी। कुंभार का हाथी मतलब मिस्टर डोंकी, मिस्टर डोंकी माना साक्षात वे गधे हैं। संसार का भार टेंशन डो डो के मर जाएंगे, अपने हृदय के आनंद स्वरूप अच्युत की करीबी सत्संग के बिना महापुरुषों की कृपा के बिना नहीं मिलती। इसी बात को कबीर जी ने अपने ढंग से कहा, तीर्थ नाए एक फल धर्म लाभ होगा, संत मिले फल चार धर्म अर्थ काम मोक्ष, सतगुरु मिले अनंत फल। अनंत तो अच्युत है परमात्मा, उसकी समझ आएगी, उसी में विश्रांति आएगी। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। और तुम शिविर में आए हो, 3 दिन यहां आश्रम में रहोगे, अगर तुमको ये ऊंचे से ऊंची और पीएचडी की आध्यात्मिकता की पीएचडी की बात तुमको न सुनाऊं तो क्या बाजार में जाके सुनाऊंगा? जो समझ पाया तो बेड़ा पार होगा, नहीं तो थोड़ा कुछ अंश तो समझ ही लेगा, और कुछ भी नहीं समझा और कपड़े छिटक के चला भी गया तभी भी लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। शहद तुमने ली और फिर वापस कर दी, तपेली हमने खाली कर दी, तभी भी शहद की मिठास तुम्हारी तपेली को चिपकी रहेगी। ऐसे आपके अंतःकरण को सत्संग का ज्ञान और मिठास तो चिपक ही जाएगा। और जो ये सैटेलाइट के द्वारा घरों में सुनेंगे वे भी हाथ पैर धोकर इस विषय को ठीक से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे कैसेटों के द्वारा, तो उनको भी ऐसा ही गहरा लाभ हो जाएगा। अपन फिर आते कि राग और द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता, अनुकूलता में सुख बुद्धि, प्रतिकूलता में दुख बुद्धि। राग के अनुकूल व्यक्ति मिलता है तो सुख, और द्वेष वाले व्यक्ति मिलते तो दुख। ठीक है ना? तो सुख दुख राग और द्वेष का फल है, और अनुकूलता प्रतिकूलता इंद्रियों की। तो मन बुद्धि में होता है राग द्वेष, और इंद्रियों को लगता है अनुकूल प्रतिकूल। जब सुनो ठंड लग गई तो दुख हो गया, ज्यादा गर्मी लग गई तो दुख हो गया, ज्यादा कीचड़ में आ गए तो दुख हो गया, ज्यादा गर्म हवाओं में आ गया तो दुख हो गया। तो इंद्रियां शरीर को मैं मानते हैं, और शरीर के अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, और प्रतिकूल होता है तो बुरा लगता है। मन के अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, प्रतिकूल होता है तो बुरा लगता है। ठीक है? ऐसा अच्छा बुरा लग लग के मिट जाता है, बदल जाता है। जरूरी नहीं कि अच्छा सदा ही अच्छा लगता रहे। कामी को कामिनी का संग बहुत अच्छा लगता है, कब मिलेगी, तड़पता था, आखिर दोस्ती हो गई और होटल में चले गए और कलामू करना था वो कर डाला। अब दिन को कलामू करने से नेत्र ज्योति का सत्यानाश ज्यादा होता है। दिन को संभोग करना समझो जल्दी अंधापे को अथवा नेत्र शक्ति का ह्रास करना। अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी पर्व के दिन संभोग करना रोग प्रतिकारक शक्ति का गला घोटना है और संतान को, विकलांग संतान को बुलाना है। ऐसे दिन को संभोग करना ये नेत्र ज्योति और जीवनी शक्ति को हरास करने का बड़ा राजमार्ग है। लेकिन वो कहा तो जो नहीं मिल रही थी तो तड़फ थी, मिली तो वो तड़फ की वृत्ति शांत हुई तो आनंद आया। अब मिले और एकदम अधिक से अधिक निकट मिले कामी आदमी जो भी उसको, तो वो काम सेक्स की जो क्षणों में जो सुख मिला वो स्त्री समझती है कि पति से मिला, पति समझता है स्त्री से मिला, लेकिन बिल्कुल ये अविद्या है, ना समझी के कारण हम मरे जा रहे। स्त्री के शरीर से अगर सुख मिलता तो संभोग के बाद करवट लेकर क्यों सो जाते हो? अगर पुरुष से ही सुख मिला तो फिर आपस में झगड़ते क्यों? सुख से तो कोई झगड़ता नहीं, तो ये मिले ये करूं करूं और फिर शरीर के अंदर जो धातु था वीर्य था इकट्ठा हुआ था वो जब पसार हुआ तो वीर्य बनने में शरीर की तपस्या होती, तो तपस्या का जब ह्रास हुआ संभोग की घड़ियों में उस समय बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद उबान आ गई। तो एक तो तपस्या का योग्यता का ह्रास हुआ तो उस समय का आनंद है, जैसे रात्रि के आराम करके स्वस्थ हैं और फिर मैच देखते हैं, ए जीता वो जीता, तो जिसके जीतने में हमारा राग है तो तालियां बच जाती है, जिसके जीतने में हमारा राग नहीं है तो तालियां नहीं बजती, नाराजी होती, लेकिन टोले के प्रभाव में तालियां बज भी जाती है अंतर किनारे। तो ऐसे ही राग के अनुरूप सुख लगता है और द्वेष के अनुरूप दुख लगता है, ये बात आप समझ लिया मान लेना। और इसमें शरीर भी उसके अनुरूप अगर तैयार होता है तो सुख होता है, जैसे रात भर का फ्रेशनेस है तो मैच देखने में मजा आएगा, लेकिन रात्रि आप जगे हैं, थके हैं, बुखार है या आपका शरीर अस्वस्थ है तो मैच में वो मजा नहीं आता। ठीक है, तो शरीर की और मन की अनुकूलता से सुख, शरीर और मन की प्रतिकूलता से दुख। ठीक है, अब क्या है कि ना समझी से शरीर में अपने मैं को जाना नहीं, अविद्या के शरीर में अहम प्रत्यय हो गया, तो शरीर में अहम प्रत्यय हो गया तो मन में भी अहम प्रत्यय हुआ, बुद्धि में भी अहम प्रत्यय हुआ, चित्त में भी अहम प्रत्यय हुआ, अहंकार में भी अहम प्रत्यय हुआ। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब, शरीर और मन बुद्धि चित्त अहंकार सब एक हो गए, मिल गए, तो इसी से हमको दुख सुख और वासना के धपेड़े चपेड़ों से भटकते रहते। तो ये बात भगवान भी मानते कि मेरी माया दुस्तर है। किसकी माया? कि मेरी माया, मेरी माया माना क्या? देवी, उस देव अच्युत को देव भी बोलते, देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये माया तरना दुस्तर है। लेकिन निराश न हो मेरे बच्चे, मनुष्य जीवन में तरने वाली मति गति सत्संग और शास्त्र है, इसलिए भगवान ने कहा मामेव देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, जो मुझ अच्युत की ज्ञान स्वरूप आत्मदेव की शरण जाते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। तो अब आप ज्ञान स्वरूप अच्युत की शरण कैसे जाओगे? ये सत्संग से ही समझ पाओगे, तपस्या से नहीं, उपवास से नहीं, तीर्थ यात्रा से नहीं। इसलिए तीर्थ फल एक, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले। सत्य का जिसको अच्युत का अनुभव हुआ वह सतगुरु के रूप में आपको मिला तो उसके वचन सत करके माने तब होगा अनंत फल। भगवान नारायण भी राम जी होकर आते हैं तो सतगुरु की शरण जाते, कृष्ण भी सतगुरु की शरण जाते, तो सतगुरु का पद बहुत ऊंचा पद। कुछ लोग साधना तपस्या करके जैसे हिरण्यकश्यप भगवान बन बैठा था ऐसे अपने अपने इलाके और अपने अपने भक्तों के बीच भगवान बन जाते। ऐसा एक भगवान मेरे पास आया, खूब रोया कि मेरे को आज से 30 साल पहले कि मेरे को मेरे इलाके के लोग भगवान मानते थे, अब वही मेरे विरोध में हो गए और मेरी शक्ति चली गई। तो मैं उस अच्युत की शरण गया। अच्युत की शरण ऐसा नहीं तो कोई पैर वैर था या कोई मूर्ति को जाके पकड़ा, नहीं। अच्युत की शरण होना मतलब अपने इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को। तो सृष्टि के पहले अच्युत था, अब भी है, बाद में रहेगा, उसमें सब भरा है। तो मैंने उस साधु को आज से 32 साल लगभग पहले वाराही में मेरा सत्संग था, भीड़ तो खूब हो गई थी, तो वो सन्यासी साधु था, बूढ़ा बुजुर्ग था, उसके आगे तो मैं बालक की नहीं था, तो अलग से मिलने का टाइम उसको दिया कमरे में, तो खूब रोया। तो मैं क्या महाराज आप त्राटक करते थे क्या? बोले हाँ। मैं क्या त्राटक करने से आपकी संकल्प शक्ति बढ़ी? फिर आप पानी में देखकर लोगों को देते थे तो ठीक हो जाते थे, अथवा कुछ कोई चीज को देख के दे देते थे तो आपका संकल्प उनको मदद करता था, उनका काम हो जाता था, तो लोग आपको भगवान मानते थे। और भगवान वास्तविक माँ क्या है? वो तो भगवान जिसको जताते वही है भगवान। ऐसे तो सभी अपने अपने इलाके के बॉस बन जाते, भगवान बन जाते, क्योंकि सारे अहम को सत्ता तो उसी भगवान से आती, लेकिन इसीलिए सभी अहम अपने अपनी जगह पे भगवान। एक सन्यासिनी बहुत बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने हाथ उठा दिए थे, वो भी अहमदाबाद में है, तो हमारी परिचित थी, तो हम उनसे मिलने गए थे, 100 साल की उम्र थी। तो उसके भक्त बोल रहे थे कि फलाने भक्त ने तो कहा कि मैं भगवान बोल रहा हूं, माताजी को कुछ नहीं होगा। तो देखो माताजी, डॉक्टर ने बोला माताजी अब गई, बुला लो, 1% भी संभावना नहीं, हो पेट में सारन गांठ है और खून की उल्टियां हैं और ये है वो है, 100 साल की उम्र मतलब अब। लेकिन वो भक्त ने कहा मैं भगवान बोल रहा हूं, माताजी को कुछ नहीं होगा। अब देखो, तो कभी कभी अहम जब श्रद्धा में भर जाता है तो अहम को पता ही नहीं रहता कि मैं अहम हूं कि तुम हूं, और एकाकार हो जाता है तो सचमुच में भगवान ही बोल डालता है। इसीलिए आम आदमी की बात भी सब झूठी नहीं होती, उस समय लगता कि यह संभव नहीं है, लेकिन आम आदमी भी कभी कभी ऐसा बोल डालता है कि असंभव को संभव हो गया। उस समय वो श्रद्धा भक्ति प्रीति से अनजाने में अहम की जगह पर अच्युत की करीबी में होता है। तो मैंने उस साधु को बोल दिया इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, मेरी कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, आप मेरे को बड़ा ना मान लो। इसलिए मैंने वो दृष्टांत दे दिया कि अभी 4-5-7 दिन पहले की ये घटना है, 3 दिन पहले तो हम गए थे और उन्होंने मेरे को सुनाई। तो महाराज वो वाराही में जो साधु थे तो बोले आप तो भगवान है, अब तो सब कुछ जान गए। लेकिन मैं भगवान बन के नहीं बैठा। भगवान बनने में बड़े खतरे। कुछ ऐसी ऐसी उपासना होती है कि उस उपासना के बल से आप जो चीज चाहो ला के दे दो। एक तो प्रेत वश करने से उन प्रेतों के द्वारा वो चीज मंगा दी जाती। दूसरा, आप आईना रखो और आईने के सामने एक टक बैठ के देखो, अपनी छाया दिखेगी। और फिर अब ये सैटेलाइट में जाएगा ना, तो फिर किसी की श्रद्धा इधर उधर हो, इसलिए मैं कुछ बातें नहीं बोल पाता। तो उस छाया पुरुष को आप बैठे बैठे कहो के दाएं हिलो, बाएं हिलो, आगे झुको, पीछे झुको, आप बैठे रहोगे और आपकी एकाग्रता से वह छाया पुरुष अगर आपकी आज्ञा में आ गया, आपका ही छाया, आपका ही पिक, फिर उसको बोलो जाओ मुंबई का हलवा ले आओ, आपके पास मुंबई का हलवा आ गया, जाओ जयपुर के करेले का अचार उठा लाओ, लो जयपुर के करेले, नड़ियाद के गोटे लाओ। मन में बोलना है, बोलना नहीं है, और लोग देखते रह जाएंगे और आप यूं करके किसी को गोटे दे दो। प्रेम जी की पेन उठा के लाओ उसके कमरे से। क्या है, प्रेम पेन भूल गया है? अरे मेरी पेन मेरे कमरे में ही थी और मैंने बंद करके रखा था, बापू भगवान है, और मैं अपने को भगवान मान लूं तो आप मेरे अधीन है और मेरे मैं अपने कल्पना के दायरे में रहूंगा, अपने इलाके के मानने वालों का ही भगवान रहूंगा, वास्तविक भगवान से थोड़ी अलग बाउंड्री मेरी बन जाएगी। तो मेरी जब अलग बाउंड्री बनेगी तो मेरे को मानने वालों की क्या भगवान से जुड़ जाएगी क्या एकाकारता? नहीं। अभी कई लोग आते कि बापू आपके चित्र के सामने बैठे और शहद निकली, बापू जी आपके चित्र से बबूत निकली, आपके चित्र से ऐसा मिला ऐसा मिला, बोलते ठीक है मैं आगे बढ़ो, ऐसा होता रहता है। बाप जी आप आगे हमारा कैसा, ये सब मैं क्या छोड़ू। मैंने ये इस प्रकार की आईने में साधना नहीं की, और मैंने, मैं सच बोलता हूं, कोई प्रेत को वश नहीं किया है। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूं, यहां झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है। जॉक्स में तो गप लगाने की मैंने छूट ले रखी है, कथा के विस्तार में मैंने थोड़ी अपनी बात मिलाने की छूट ले रखी शास्त्री ढंग से, लेकिन अभी जो बोलता हूं नहीं मैंने, इसमें झूठ बोलना बड़ा भारी अपराध होता है। आप उस अच्युत से मिलते तो बाकी की योग्यताएं सहज में आ जाती है, नहीं तो एक एक योग्यता का एक एक विभाग। जैसे पृथ्वी तत्व की आप धारणा सिद्ध करो, आपको पृथ्वी में यहां गाड़ दे और आप कलकत्ते में प्रकट हो सकते हैं। जल तत्व की धारणा सिद्ध हो जाए तो हम जल में कूद जाएं और आप खोज खोज के मर जाओ, नहीं मिलेंगे, और फिर कोई हमारा मित्र या हमारा साथी या हम जहां जाए वो पानी भर दे बाल्टी और धार करते हम वहां प्रकट हो जाएंगे। हम नहीं हो सकते, लेकिन जो धारणा करते हैं, मतलब ऐसे वायुदेव की धारणा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की धारणा, तो ये पांच भूत माया भगवान की माया के अंग है। जब सीधा भगवान को नहीं मिलना है तो माया के किसी अंग में पढ़ो और कई युगों तक आप पुजवाते रहो। हम स्कूल में पढ़ते नहीं थे, साधु बन गए थे, घर छोड़ के चले गए थे, फिर यहां से पसार हो रहे थे, तो मैंने सुना कि आज कांकरिया में कोई साधु पानी पे चलकर दिखाने का प्रोग्राम है, तो उसने ये सफल प्रोग्राम कर रखे थे, लेकिन कांकरिया में वो प्रोग्राम जो करने जा रहा था तो डूब जाता था, विफल हुआ, उसकी हंसी हो गई। तो पानी में चलने के प्रयोग सफल होते हैं साधना से, लेकिन प्रयोग करते करते वो धारणा की शक्ति खत्म हो गई तो धड़ा विफल हो गई। हम जब साधना करते थे तो आकाश में उड़ने जैसी समझो, थोड़ी सी साधना करते तो हम शायद उड़ने की सिद्धि पाना चाहते तो सफल हो जाते, लेकिन हम फिर उधर नहीं गए उस रास्ते। पक्षी भी उड़ते फिरते, तो एक एक भूत की धारणा सिद्ध हो जाए अब कितने वर्ष लगते सामने वाले पर है, इससे सीधा क्यों नहीं भगवान की शरण आ जाओ। एक एक चपरासी को, कारकुन को, क्लर्क को, कलेक्टर को रिझाओ, इससे प्रेसिडेंट पद पे क्यों ना पहुंच जाओ सीधा। तो वो सब आपको रिझाते फिरेंगे। तो भगवान की शरण वह है, मामेव प्रपद्यन्ते मायां मेतां तरन्ति ते, उसके लिए सारे प्रेसिडेंट के आगे तो कानून महत्व रखता है, लेकिन भगवान की कृपा के आगे ये पंचभूतों का और भगवान की प्रकृति का नियम का कानून सब माफ हो जाता है। अपीचे दुराचारे भी हो, दुराचारी को तो कई जन्म लेने हैं, दुराचारी को तो नरकों में जाना है। अपीचे दुराचारे भी हो पापे भी हो पाप कृतम, पापी प्रिय प्रियतर प्रियतम, पाप पापी पाप कर्तर पाप कृतम। दुनिया के सारे पापियों को खोज के और उसमें से भी छांट छांट के ज्यादा खतरनाक और उसमें से भी अत्यंत पापी छांट गए, ऐसा भी मेरी शरण आ जाए डर जाता है। ये भगवान के तरफ से कितना बड़ा तोहफा है, कितनी बड़ी करुणा है, कितनी बड़ी कृपा है, तो उसका क्यों ना फायदा ले। एक एक भूत को रिझाए, एक एक मिनिस्टर को रिझाओ। इसीलिए कबीर की बात मुझे बहुत प्यारी लगती है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैं दृष्टांत देता हूं ना, वो ब्रह्मचारी गया बाबा महाराज, में कहीं भी जाऊं तो मुझे रोजी रोटी मिल जाए खाने पीने को। बाबा ने एक का कर दिया, जाता है तो रुपए भर का सामान अथवा दक्षिणा मिल जाती उसको। फिर दूसरे बाबा को रिझाया तो उसने मिंडी कर दी, तो मैंने कहा 300 रुपए का उसकी आवक हो गई। फिर तीसरे महापुरुष को उसने बहुत रिझाया तो उसने बोला तेरे गुरु का एका किया हुआ है तो लाओ हम मिंडी कर देते, तो लगभग महीने में 3000 की उसको आमदनी होने लगी। तो धन बढ़ता है, इंद्रिय लोलुपता बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ता है, तो बुद्धि बट जाती है, सात्विकता बिखर जाती है, भक्ति बिखर जाती है। तो उसके बुद्धि में भूत घुस गया कि गुरुजी के एकड़े से तो हमने 200-400 रुपए लिए होंगे, जाके गुरुजी को 1000 रुपए दे के अपना जान छुड़ा दे, हम स्वतंत्र। तो गुरुजी के यहाँ पैसे डर दिए, बोले गुरुजी आपके एकड़े से तो हमने जो लिए वो हमने चुका दिया, आप मेरे आप स्वतंत्र कर दीजिए। गुरु ने कहा ठीक बात है, लाओ जरा वो कागज। गुरु ने एकड़े पे चौकड़ी मार दी, आप जाओ मिंडिया उगराते रहो। ऐसे उस एक अच्युत से तुम्हारी ये 2 मिंडियां नेत्र देख रहे, उस एक अच्युत चैतन्य से ये 2 मिंडियां नाक की सूंघ रही है, उस एक अच्युत की कृपा करुणा सत्ता से ये कान सुन रहे, उसी के कृपा से नीचे की 2 ये इंद्रियां पेशाब और आदि सफाई कर रही। एक कहते सब होता है, सब ते एक न हो, ये 9 द्वार जो है सब मिलकर भी उस अच्युत को नहीं बना सकते। और अच्युत तो ऐसे शरीर रोज न जाने कितने करोड़ पैदा कर करके अपनी माया में खदबदा के लीन कर देता है। म्युनिसिपैलिटी के बत्ती के नीचे कितने पतंगे पैदा होकर आ जाते शाम को और गुनगुनाते नाचते कूदते और सुख के लिए भागते भागते तड़प तड़प के मर जाते। उनको उस समय तो सुख होता है, लेकिन सुख का परिणाम क्या हुआ? दुख। तो वास्तविक में सुख के लिए क्यों तड़पता है हमारा मन और बुद्धि? जहां सुख मिलता है वहां राग होता है, जहां दुख मिलता है वहां द्वेष होता है। द्वेष को या दुख को हटाना है और सुख को थामना है। ये कर करके हमारे कई जन्म पूरे हो गए और अभी भी काफी जन्म पूरा हो गया, दुख मिटा नहीं और सुख टिका नहीं। ये सच्चाई है आपकी हमारी सभी की, है ना? मंत्री बन गए, ये बन गए, नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, फिर भी दुख मिटा नहीं। बापूजी अब आशीर्वाद करो, नहीं हो जाए बापूजी। जब तक अच्युत की पूरी शरण नहीं जाएंगे हम लोग, तब तक पूरा दुख निशेष नहीं होता। संसार दुखालय है, संसार अनित्य है, और जीवात्मा और अच्युत नित्य है। तो नित्य को अनित्य सुख कब तक सुखी कर सकेगा? अमर को मरने वाली चीज कब तक रिझा सकेगी? आप अमर हैं, शरीर मरने वाला है, और नाक की गंध भी मरने वाली है, और सेक्स का सामर्थ्य भी मरने वाला है। तो सेक्सी लोग चिपक के रहे, देखो फिर क्यों छोड़ते एक दूसरे को? ऐसे चटोरे लोग व्यंजन से चिपक के रहे, क्यों छोड़ते? सुगंधी के गुलाम मजा आया तो लगा रहे मजा से, नहीं रख देना पड़े। तो आप नित्य हैं, और ये तरंगित मजा राग द्वेष का अनित्य है। तो जितना जितना बाहर से मजा लेते उतने उतने आप छिछरे हो जाते। आपको अच्युत में विश्रांति करने की योग्यता आपकी क्षीण हो जाती, और जितने जितने बाहर के मजों से आप संयत रहते, भोजन करते लेकिन मजा लेने के लिए नहीं, तो आप ठीक से खाएंगे? तो अब बात यहां आई कि हम निर्दुख कैसे हों? दुख कोई नहीं चाहता। तो शास्त्र भी कहते, जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात जागरे ही जागरे। जन्मते समय मां को पीड़ा होती, उससे ज्यादा बच्चे को होती। मां के छोटे अंग से इतना बड़ा शरीर निकलता, कितना कोमल शरीर को दबाव पड़ता। कई बच्चे तो बेचारे रोने की क्षमता भी नहीं, सुन्न से हो जाते। कितनी पीड़ा। मां के गर्भ में हम ऊंधे लटक रहे थे, मां तीखा खाती या गुस्सा करती तो हमारी कोमल चमड़ी पर पीड़ा होती, और गर्भस्थ और जो जीव छोटे मोटे काटते तो हम सुन्न से हो जाते थे। कितना दुख। जैसे ईंट नेवे में निभाड़े में पकती है, ऐसे लिक्विड मां का रज और पिता का वीर्य, उस लिक्विड को पकाते पकाते हड्डियों वाला शरीर और खोपड़ा बनाया प्रकृति ने। तो कितना निभाड़े में तो ईंट 4-6 दिन तक पकती है, हम हजूर 10-10 महीने 9-9 महीने 8-8 महीने पक के आए, और फिर ये मर जाएगा, इतनी पक्की बात है। तो इसका सदुपयोग कर लो, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बस सत्य वो अच्युत है, उसको पालो। आपके पास वो बुद्धि दी है अच्युत ने। पेट भरना, बच्चे पैदा करना, दुख आए तो भाग जाना, सुख आए तो चिपक जाना, इतना तो कुत्ता घोड़ा गधा बिला पशु सब जानते। आप पढ़ लिख के भी इतना ही किया तो आपने अपने साथ धोखा किया भैया। वाहवाही हुई, सीट बनी रहे, हम मौज में है, लेकिन सीट चली गई, वाहवाही चली गई, तो आप दुखी हो जाएंगे ना भैया। सब अनुकूल है, मजा है, लेकिन थोड़ी प्रतिकूलता होगी तो मजा चली जाएगी ना। हम तो चाहते हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये आती जाती रहेगी, लेकिन आप ऐसी जगह पे पहुंचो कि आपके आगे खिलौने हो के चले जाए, आप उस खिलाड़ी के साथ अपना दिल मिलाकर जिए। बस बहुत ऊंची बात है और बहुत सरल है, सहज है। सिद्धियां पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये करके उसमें मेहनत है। छाया पुरुष को बनाना हो उसमें मेहनत है, अच्युत की शरण में मेहनत नहीं है, और उन सबसे ऊंचे पद पे आप पहुंच जाएंगे। विवेकानंद ऐसे सज्जन के पास गए थे, तो प्रसिद्धि थी, तो तब उस आकाश में हाथ घुमाकर वस्तु देने वाले साधु ने विवेकानंद को प्रभावित करने के लिए जो मांगते गए वो देते गए। तो करीब उनके हॉल का एक कोना ढेर हो गया वस्तुओं का। विवेकानंद ने कहा कि मैं मांगता गया वो देते भी गए, आकाश में हाथ घुमाते, और उनके वो जगह का कमरे का एक कोना में ढेर बड़ा खासा हो गया। फिर भी भाइयों, परमात्मा प्राप्ति के आगे इसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैं अखंडानंद की बात करता हूं ना, कि किसी साधु के पास गए थे, वो मन चाहे चीज दे देते दे थे, तो रात को 10 बजे गए और बोले क्या खाओगे, बोले मालपुए खाएंगे। बोले रात को 10 बजे मालपुए, अच्छा तो बातों में रखा और संकल्प किया। फिर यूं हाथ घुमाए तो हाथ में तसला आ गया, 10 आदमी खाए उतने मालपुए। अखंडानंद अपने आश्रम में आए थे अहमदाबाद, इस मोटे आश्रम में मोक्ष कुटिया में बैठे थे साथ में, और पत्रे वाला हॉल था, वहां सत्संग भी उन्होंने किया था। ये अखंडानंद जी का अनुभव, किसी पूर्वकालीन अनुभव नहीं, इसी युग का। फिर अखंडानंद जी बोलते हैं उनके प्रवचन के द्वारा, पुस्तक में भी ये बात है, और मैंने ये पुस्तक से सुनी है, उनके मुख से नहीं सुनी, पुस्तक से सुनी। बोलते हैं कि हमने ये मालपुए खाए, हमको स्वाद भी आया मालपुए का और नींद भी आई। सुबह जब हम लोटा लेकर मालपुए खाली करने गए, आप समझ गए ना, तो हरिजनों की बस्ती में दो माइयां बुरी तरह लड़ रही थी, चिल्ला रही थी। तो एक हरिजन भाई ने कहा कि रावण बरातियों के यहां से 10 आदमी खाए उतने मालपुए में मांग लाई थी, और तू सब जो कुछ मेरे घर में देखती है, कैसी तेरी नजर है रावण, तू चोर। वो बोलती है मेरे अपने खुगलू की कसम है, अपने फलाने बेटे की कसम है, जो मैंने तेरे माल पे उठाएंगे तो तुमने नहीं उठाए तो रांड क्या भूत ले गए। अखंडानंद कहते कि हमको बड़ी ग्लानी हुई, अब कैसे उसको कहे कि हाँ हमारे पेट में है मालपुए। वे मालपुए तो खाली करके आए हम, लेकिन महत्राणी के घर के मालपुए भूत उठा के दिया, वो ग्लानी अभी तक नहीं आती। तो ऐसे चमत्कारों में साधक लोगों को प्रभावित होना, ईश्वर से दूर होने के सिवा और कुछ नहीं।